एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
You.
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे जब आप उसके वचनों को सुनते हैं। आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे, हमारे हृदयों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके पिता, और आशीष पा सके और तेरे रास्ता में चलने सके। मेरे हरेक श्रोतागणों के संग हो कि वे तेरे वचनों को सुन करके तेरे बाट में चलने सके, और मेरे संग हो पिता तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा तेरा वचन को अच्छी तरह से बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का मेरा संवाद का शीर्षक है कार्य और जीवन। परमेश्वर ही इस संसार के लिए जीवन, प्रकाश और आनंद का स्रोत है। सूर्य से निकलने वाली किरणों की तरह, जल के स्रोते से फूटती हुई पानी की धाराओं की तरह, परमेश्वर की आशीषें उसके सभी प्राणियों को बिना किसी रुकावट के प्राप्त होती रहती हैं। जहाँ कहीं भी मनुष्यों के हृदय में परमेश्वर का आत्मा होगा, वह प्रेम और आशीष के रूप में दूसरों के जीवन को आशीषित करने के लिए बहता रहेगा। पतित मनुष्यों को उठाने और उनका उद्धार करने में ही हमारे उद्धारकर्ता को आनंद मिलता था। उसने इस महान कार्य के लिए अपने प्राणों को भी प्रिय ना जाना, बल्कि लज्जा को तुच्छ समझकर क्रूस का दुख उठाया। इसी प्रकार दूसरों की भलाई करने के लिए स्वर्गदूत भी सदा तैयार रहते हैं। स्वर्गदूतों को इसी कार्य में आनंद प्राप्त होता है। जिस कार्य को स्वार्थी लोग एक अपमानित कार्य समझते हैं, अभागे लोगों की सेवा करने में वे स्वर्गदूत, जो चरित्र और पदवी में उनसे बहुत बड़े और महान हैं, आनंद महसूस करते हैं। मसीह के निस्वार्थ प्रेम की भावना ही वह भावना है जो सारे स्वर्ग में बसी हुई है और स्वर्गीय आनंद का मूल तत्व है। यही भावना मसीह के सच्चे अनुयायियों के जीवन और कार्यों के द्वारा जगत में प्रकट होगी। जब मसीह का प्रेम हृदय के आसन पर विराजमान होता है, तो जिस प्रकार से खुशबू छिपाने से नहीं छिपती है, ठीक उसी प्रकार से यह प्रेम भी छिप नहीं सकता है। इसका पवित्र प्रभाव वे सब लोग महसूस करेंगे जो हमारे संपर्क में आएंगे। हृदय में मसीह प्रेम की भावना रेगिस्तान के बीच में शीतल जल के सोते के समान है, जो सभी के मन को शीतल करता है, और जो लोग प्यासे मर रहे हैं उनको जीवन जल पीने के लिए आमंत्रित करता है। यदि हम यीशु से प्रेम करते हैं, तो मानवता को ऊंचा उठाने और आशीषित करने के लिए हम उसी प्रकार के कार्य करेंगे जिस प्रकार के कार्य हमारा प्रभु किया करता था। यह स्वर्गीय भावना हमारे स्वर्गीय पिता की देखभाल के अधीन आने वाले सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा, दया और सहानुभूति दिखाने वाले कार्यों के द्वारा प्रकट होगी। इस पृथ्वी के ऊपर मुक्तिदाता का जीवन ऐसा वो आराम और स्वयं अपने लिए समर्पित जीवन नहीं था, परंतु खोई हुई मानवता के उद्धार के लिए बड़े जोश और अथक परिश्रम के साथ वह निरंतर कार्य करता रहा। चरनी से लेकर कलवरी क्रूस तक उसने आत्मत्याग का मार्ग अपनाया और कड़ी यातनाओं, कष्टदायी यात्राओं और थकाने वाली चिंताओं और परिश्रम से ना तो उसने पीछा छुड़ाया और ना ही उनसे दूर भागने की कभी कोशिश की, बल्कि उसने कहा, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दे। मत्ती 20:28। यही उसके जीवन का महान उद्देश्य था। इस महान लक्ष्य के सामने दूसरी सभी बातें महत्वहीन थी। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और उसके काम को समाप्त करना ही उसका भोजन था। उसके परिश्रम में स्वार्थ तथा अपने हित का कोई स्थान नहीं था। इसी प्रकार से जो लोग मसीह के अनुग्रह के भागीदार हैं, उन्हें प्रत्येक प्रकार के बलिदान के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, ताकि मसीही लोगों के जीवन के द्वारा दूसरे लोग, जिनके लिए मसीह ने अपने प्राण दिए हैं, वे भी उसके स्वर्गीय वरदान में हिस्सेदार हो सके। ऐसे लोग संसार को सुधारने, उन्नत करने तथा निर्मल बनाने के लिए यथाशक्ति प्रयास करेंगे। यदि आपके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न हो गई है तो समझ लीजिए कि आपका नया जन्म हो चुका है। जैसे ही कोई मनुष्य मसीह के पास आता है, वैसे ही उसके मन में यह इच्छा पैदा हो जाती है कि वह भी दूसरे लोगों को यह बताए कि उसने यीशु के रूप में कितना बहुमूल्य मित्र पाया है। उद्धार करने वाला और पवित्र करने वाला सत्य उसके हृदय में छिपकर रह ही नहीं सकता है। यदि हम मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए हैं और उसके पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो हम खामोश नहीं रह सकते हैं। यदि हमने परख कर देख लिया है कि हमारा प्रभु कितना दयालु और भला है तो उसके बारे में लोगों को बताने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ अवश्य ही होगा। फिलिप्पुस को जब उद्धारकर्ता मिल गया तो तुरंत ही वह दूसरों को मुक्तिदाता के पास लेकर आने लगा। हम भी ठीक इसी प्रकार अपने मित्रों को अपने प्रभु की उपस्थिति में लाने के लिए कार्य करने लगेंगे। हम उन लोगों को मसीह के गुणों और आने वाले जगत की अनदेखी वास्तविकताओं के बारे में बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। जिस मार्ग पर यीशु चला था उसी पर चलने की हमारे भीतर एक तीव्र इच्छा पैदा हो जाएगी। हमारे अंदर एक ऐसा जोश भर जाएगा कि हमारे मित्र लोग देख सके, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29। दूसरों की भलाई के वास्ते जो कार्य हम करेंगे वही कार्य हमारी भलाई का कारण बन जाएगा। उद्धार की योजना में मनुष्य को हिस्सेदार बनाने के पीछे परमेश्वर की यही योजना थी। परमेश्वर ने मनुष्यों को ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बनने का विशेष अवसर प्रदान किया है ताकि स्वर्ग से आशीषित होकर वे भी दूसरे लोगों को आशीषित कर सके। यह सबसे बड़ा सम्मान, सबसे महान आनंद है जो परमेश्वर द्वारा मनुष्यों को दिया जा सकता है। इस प्रकार से जो लोग प्रेम के परिश्रम में भागीदार होते हैं वे अपने सृष्टिकर्ता के सबसे निकट रहते हैं। परमेश्वर सुसमाचार सुनाने तथा प्रेमपूर्ण कार्य करने का सारा भार स्वर्गीय दूतों को सौंप सकता था। अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए वह अन्य साधनों का प्रयोग भी कर सकता था, परंतु असीम प्यार में उसे यह पसंद आया कि हमें भी अपने साथ सहकर्मी बनाएं, ताकि हम निस्वार्थ कर्म अर्थात आशीष, आनंद और आत्मिक उत्थान का लाभ प्राप्त कर सकें। मसीह के दुखों में सहभागी बनकर हम उसकी सहानुभूति दूसरे लोगों के ऊपर प्रकट करते हैं। दूसरों के कल्याण के लिए आत्मत्याग का हर एक कार्य दान देने वाले के मन में उदारता की उस भावना को बल प्रदान करता है जो उसे जगत के उद्धारकर्ता के समान बना देती है। जो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से धनी हो जाओ, 2 कुरिन्थियों 8:9। और जब हम हमारे ठहराए गए इस स्वर्गीय उद्देश्य को पूरा करेंगे तभी हमारा जीवन हमारे लिए आशीषमय हो सकता है। जब आप उस रूप में काम पर जाएंगे जिस रूप में मसीह चाहता है कि उसके चेले काम पर जाएं और उसके लिए आत्माओं को जीते, आप स्वर्गीय बातों के बारे में गहन ज्ञान और गंभीर अनुभव प्राप्त करने की जरूरत महसूस करेंगे और धार्मिकता के लिए एक भूख और प्यास को प्रकट करेंगे। तब आप परमेश्वर से विनती करेंगे और आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा और आपकी आत्मा उद्धार के जल के सोते से भरपूरी के साथ पिएगी। विरोध और परीक्षाओं का सामना करना आपको प्रार्थना और बाइबल अध्ययन की ओर लेकर जाएगा। तब आप अनुग्रह और मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे और आपका अनुभव भी बढ़ता जाएगा। निस्वार्थ रूप से दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने से आपके चरित्र को गहराई, सुदृढ़ता, स्थिरता और मसीह के समान मधुरता प्राप्त होती है और आपको सुख व शांति प्राप्त होती है। भलाई करने की इच्छा जाग उठती है। आलस्य, सुस्ती और स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं बचता। जो लोग इस प्रकार के मसीही सद्गुणों को प्रकट करते हैं वे बढ़ते हैं और परमेश्वर का काम करने के लिए मजबूत बनते जाते हैं। उन्हें आध्यात्मिक बातों में स्पष्ट समझ और विश्वास में बढ़ोतरी प्राप्त होगी और उनकी प्रार्थनाएं भी अति जोशीली होंगी। स्वर्गीय स्पर्श के प्रति उत्तर में परमेश्वर का आत्मा उनके हृदय को प्रेरित करके पवित्र आत्मा के साथ तालमेल बनाने के लिए पुकारता है। जो लोग इस प्रकार से दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को उपकार के कामों में लगा देते हैं, निश्चय रूप से वे वास्तव में अपने ही उद्धार के कार्य में संलग्न हैं। अनुग्रह में बढ़ने का एकमात्र तरीका यही है कि हम उसी काम में लग जाएं जिसे करने का आदेश मसीह ने हमें दिया है, अर्थात निस्वार्थ रूप से अपनी क्षमता के अनुसार उन लोगों की भलाई करने और उन्हें आशीषित करने के लिए कार्य में लग जाएं जिनकी मदद हम कर सकते हैं। व्यायाम करने से बल बढ़ता है। जीवित रहने की एक ही शर्त है, हम सक्रिय बने रहें। बहुत से वे लोग जो निष्क्रिय बने रहकर बिना कुछ किए अनुग्रह के द्वारा प्राप्त होने वाली आशीषों को प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं, वे केवल बिना मेहनत की रोटी खाकर जीवन बिताने की कोशिश कर रहे हैं। प्राकृतिक संसार के समान ही आत्मिक संसार में भी सदा इसका परिणाम पतन और विनाश होता है। जो मनुष्य अपने हाथ पैर हिलाने से इनकार करता है वह शीघ्र ही अपने हाथ पैरों को प्रयोग करने की शक्ति खो देता है। इसी तरह से वे मसीह लोग जो परमेश्वर द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं, वे केवल मसीह में बढ़ने से ही वंचित नहीं रह जाते हैं परंतु वे उन बल को भी खो बैठते हैं जो उन्हें दिया गया है। मसीह की कलीसिया मानव के उद्धार के लिए परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई संस्था है। इसका काम संसार के सभी लोगों को सुसमाचार सुनाना है और इसकी जिम्मेवारी सारे मसीहों के ऊपर है। हर एक को अपनी योग्यता और अवसर के अनुसार उद्धारकर्ता के महान आदेश को पूरा करना चाहिए। मसीह का वह प्रेम जो हम पर प्रकट किया गया है वह हमें उन सब लोगों का कर्जदार ठहराता है जो अभी तक परमेश्वर के प्रेम से अनभिज्ञ हैं। परमेश्वर ने हमें जो प्रकाश दिया है वह केवल हमारे लिए ही नहीं है परंतु उन्हें भी देने के लिए दिया गया है जो उसके प्रेम से वंचित हैं। यदि मसीह के वर्तमान चेले अपने कर्तव्य के प्रति सावधान होते तो जहाँ एक व्यक्ति अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाने का कार्य कर रहा है वहाँ पर हजारों लोग कार्य कर रहे होते और वे सब जो व्यक्तिगत रूप से प्रचार कार्य के लिए नहीं जा सकते हैं वे इस सेवकाई को अपने साधनों संवेदनाओं और प्रार्थनाओं के द्वारा संभालते और मसीह देशों में आत्माओं को बचाने के लिए अधिक जोश के साथ परिश्रम किया जाता। यदि मसीह के लिए काम करने की चाहत हो तो अन्य जातियों के देश में जाने की कोई जरूरत नहीं और न ही हमें अपना घर छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता है। हम अपने ही परिवार के दायरे में कलीसिया के ही भीतर या उनके बीच जिनसे प्रतिदिन हमारा संपर्क होता है मिलते जुलते हैं, काम धंधा या लेन देन करते हैं, उनके बीच में मसीह की सेवा का कार्य कर सकते हैं। हमारे उद्धारकर्ता के जीवन का अधिकांश भाग नाजरत में बढ़ई की दुकान में काम करते हुए बीता। अनजान और गुमनाम इंसान के समान किसानों, मजदूरों और बेसहारा लोगों के साथ बातचीत करते और उनके साथ साथ चलते फिरते समय सेवा करने वाले स्वर्गदूत हमारे प्रभु के साथ साथ रहते थे। चाहे बढ़ई की दुकान पर काम करने का समय हो, चाहे रोगियों को चंगा करने का समय, या फिर समुद्री तूफानों से भरी हुई गलील की झील पर चलने का समय हो, वह बड़ी वफादारी के साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहता था। अतः हम भी चाहे जितने निम्न काम में लगे हुए क्यों ना हो या जीवन में हमारी पदवी कितनी ही छोटी क्यों ना हो, हम भी यीशु के समान जीवन बिताते हुए उसका काम कर सकते हैं। प्रेरित पौलुस कहता है, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी दशा में परमेश्वर के साथ रहे। 1 कुरिन्थियों 7:24 यह कहता है। व्यापारी इस ढंग से अपना व्यापार चलाए कि उसकी ईमानदारी के कारण उसके स्वामी की बड़ाई व प्रशंसा हो। यदि वह मसीह का सच्चा चेला है तो अपने धर्म, अपने कर्म तथा अपने विनम्र व्यवहार के द्वारा दूसरों के ऊपर मसीह को प्रकट करेगा। एक मिस्त्री भी उस मसीह का सामान्य और विश्वासी प्रतिनिधि हो सकता है जिसने गलील की पहाड़ियों के बीच निम्न पेशे वाला काम किया। हर एक जो मसीह के नाम का कहलाता है ऐसे काम करे कि दूसरे लोग उसके भले कामों को देखकर सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता का गुणगान करें। बहुत लोगों ने अपनी शक्ति व प्रतिभा को मसीह की सेवा में उपयोग के लिए केवल इसलिए नहीं दिया है क्योंकि दूसरे लोगों के पास तो उनसे भी अधिक शक्ति व क्षमता तथा प्रतिभा है। इस तरह की धारणा बन गई है कि केवल वे लोग ही परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को अर्पण कर सकते हैं जिनके पास विशेष वरदान है। ऐसी सोच बन गई है कि प्रतिभा और वरदान केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही नसीब होते हैं तथा अन्य वर्ग के लोग उनसे वंचित रहते हैं, इसलिए वे परिश्रम करने तथा इनाम पाने के काम में कोई हिस्सा नहीं ले सकते हैं। परंतु दृष्टांत में ऐसा नहीं दिखाया गया है। जब घर के स्वामी ने अपने दासों को बुलाया तो उसने हर एक को उसका काम बांट दिया। जीवन के छोटे से छोटे काम को हम ऐसी श्रद्धा और प्रेम की भावना से करें जैसे कि प्रभु के लिए कर रहे हो। कुलिसियों 3:23। परमेश्वर का प्रेम जब हृदय में बसता है तो जीवन में भी दिखाई देता है। मसीह की मधुर सुगंध हमको घेर लेगी और हमारा प्रभाव बढ़ेगा और समाज को आशीष देगा। परमेश्वर के लिए कार्य करने से पहले आप किसी महान सुअवसर या अति विशेष योग्यता प्राप्त करने की प्रतीक्षा में ना बैठे रहे। संसार आपके बारे में क्या सोचेगा, आपके दिमाग में ऐसे विचार आने भी नहीं चाहिए। यदि आपकी दिनचर्या आपके विश्वास की पवित्रता और ईमानदारी की साक्षी है तथा दूसरे लोगों को यह विश्वास है कि आप उनका हित चाहते हैं तो आपकी मेहनत कभी भी पूरी तरह से बेकार नहीं जाएगी। प्रभु यीशु का विनम्र से विनम्र शिष्य भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। ऐसा हो सकता है कि वे इस बात को महसूस ही ना करें कि वे भी कोई विशेष काम कर रहे हैं, परंतु वे अपने अप्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा आशीषों की ऐसी लहरें उठा सकते हैं जो समय के साथ अधिक चौड़ी और गहरी होती जाएंगी और उनका प्रतिफल शायद न्याय के अंतिम दिन से पहले हमें पता भी ना चले। वे यह महसूस नहीं करते कि वे कोई महान कार्य कर रहे हैं। सफलता पाने के लिए उन्हें फिक्र करने या अपने आप को थकाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें तो चुपचाप परमेश्वर के उस काम को जो उन्हें सौंपा गया है बड़ी ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए और उनका जीवन निरर्थक नहीं जाएगा। उनकी अपनी आत्माएं भी प्रतिदिन यीशु की समानता में ढलती चली जाएंगी। वे इस जीवन में परमेश्वर के सहकर्मी हैं और इस तरह से अपने आप को उत्तम कार्य के योग तथा आने वाले जीवन के आनंद के लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, दयालु पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को आशीष दे। इन वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें तेरे राह में चलने के लिए मदद कर पिता। तू हमसे प्रेम किया है, तू हमें मौका दिया है कि हम तेरे साथ काम करें, तेरे प्रेम को दूसरों को बांटे। हम सबों को तेरे काम में इस्तेमाल कर और बल दे और हमें आशीष दे पिता। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037। महाराष्ट्र भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।